सवाल है कि हम अपने वालिदैन होने की हैसियत से हम अपने बच्चों के दिलों में कुरान, नमाज वग़ैरह की मोहब्बत और उनका ताल्लुक कैसे पैदा कर सकते हैं। अच्छा सवाल है। इस बारे में एक कहावत है, हकीकत भी होगी, कि किसी ने एक माँ से पूछा कि तुमने अपने बच्चों को किस तरह ये फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इनसे दूर रखा है और उनको किताबें और इस तरह की चीज़ों से जोड़ रखा है, ये तुमने कैसे इनकी तरबियत की। उस माँ ने ये कहा कि देखो बच्चे, जो बात कही जाती है उस पर नहीं, बल्कि जो बात, जो काम किया जाता है उसके मुताबिक अपना अमल और ज़िंदगी गुजारते हैं। ज़ाहिर है कई माओं के साथ ये बात पेश आई होगी, ये तो किसी ने कह दिया और किसी ने लिख दिया। ये एक हकीकत है कि इंसान घर में जैसा माहौल बनाता है उसका असर बच्चों पर होता है। बड़ी चीज़ जिसका मैंने पिछले हफ्तों में तذکرہ हुआ था कि बड़ी चीज़ जो है वो माहौल है। घर में अगर माहौल होगा कुरान का, कुरान के साथ ताल्लुक़ का, अमल का, नमाज़ों का, मस्जिद जाने का, बच्चों में, लड़कों में मस्जिद आने जाने का, या घर में नवाफिल पढ़े जा रहे हैं या कुछ तिलावत है या कोई, तो इस तरह की चीज़ें, यानी बातें हों, कभी सवाल जवाब हों, अच्छा कुरान में ये वाक़ इस तरह आया, अच्छा कुरान में ये वाक़ इस तरह आ रहा है, फ़लाने नबी की कहानी इस तरह बयान की गई, बातों इस तरह के तस्करे जब आते रहते हैं घर में सुन्नतों का और इस तरह की चीज़ों का, और वाक़ात, ख़ास तौर पर वाक़ात होते हैं वो बच्चों के लिए बड़े मुफीद होते हैं। कोई नबी का वाक़ा आ गया, किसी सहाबी का वाक़ा आ गया, इस तरह के वाक़ात का तस्करा घर में करते रहना, इससे बच्चों को, इसलिए कि बच्चे जब दूसरे वाक़ात और कहानियाँ सुनते हैं, फ़लाना प्लेयर ऐसा करता है, फ़लाना ऐसा करता है, उनको जिस तरीके से जिसकी तारीफ़ की जाएगी उसके जहन में वो बातें बैठ जाएंगी, तो उनके जहनों में इस तरीके की तालीम व तरबियत घर के माहौल में हो। और फिर हम ये देखें कि वो किन के साथ उठते बैठते हैं, इनको पढ़ाने वाले कौन हैं, जिनके पास वो पढ़ते हैं वो कौन हैं। इंतखाब भी होता है, चॉइस हो इंसान के पास तो इंसान चॉइस देख ले कि ऐसे लोगों के साथ उनका उठना बैठना हो जिसमें ऐसी बातें पाई जाएं। तो माहौल सबसे बड़ी चीज़, उसका जवाब एक लफ्ज़ में अगर दिया जाए तो माहौल है जिससे बच्चे सीखते हैं। इन मुल्कों में बहरहाल हमें ये बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं माहौल वग़ैरह की, लेकिन बहरहाल कोशिश की जा सकती है इंशाअल्लाह। एक और सवाल है, अबू दुजाना का तावीज़ क्या है और कैसे इस्तेमाल करें। मेरे ख़्याल ये सवाल का मकसद वो है कि जिन्नात के बारे में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़त लिखकर दिया था, जिन्नात से हिफाजत के सिलसिले में ख़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर है, अगरचे सनद उसकी कवी नहीं है, इंतहाई ज़ईफ़ है, लेकिन एक नस्बत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, और उसके तजुर्बे के लिहाज से उसका फ़ायदा भी है कि बस उसको घर में रख देना है, वो ख़त जो है उसको घर में रख देना है, उसके साथ इंसान साथ में वो ख़त भी लिखा हुआ होगा और कुछ और जो आयतें इंसान को आयतुल कुर्सी वगैरह इस तरह की चीज़ें याद हों वो रख के बस घर में रख देना है, जिस इलाके में इंसान वो, जिस घर कमरे में हॉलवे में इंसान वो ख़त रख दे, तो तजुर्बा यह है कि वहाँ जिन्नात वग़ैरह अगर होते भी हैं, जिन्नात के असरात, तो वो चले जाते हैं वहाँ से। एक और सवाल है, सवाल तो क्या दुआ के लिए है, और जितने लोग शामिल हैं सबको मैं कहूँगा कि सब इस दुआ में हिस्सा ले रहे, कि किसी बच्चे की सर्जरी अभी हो रही है, घर के फ़र्द हैं और सर्जरी होने वाली है, सर्जरी अभी हो रही है, तो अल्लाह ताला उनके उस ऑपरेशन को, सर्जरी को अल्लाह ताला कामयाब फरमाए और अल्लाह ताला हर तरह की आफ़ियत और खैर अता फ़रमाए। ये सब अगर उसके हक़ में दुआ कर दें, आमीन कह दें, किसी की आमीन कबूल हो जाए, किसी का काम बन जाएगा और हमें सवाब मिल जाएगा। ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ جمعرات کو اپنے وقت پہ انشاءاللہ ہم جمع ہوں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.